राधिका थोड़ा गुस्से में बोली थी। ये तो मुझे इतनी बड़ी चुड़ैल लगती है कि मेरा दिल करता है इसके सारे बाल मुंडवाकर इसे गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमा दूं। जैसे ही राधिका ने गुस्से में ये कहा, सब हंस पड़े। वंशिका हंसते हुए बोली थी, अरे वाह राधिका दीदी, आपने तो बिल्कुल हमारे मन की बात कह दी। वैसे भी हमने आज तक इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। बस अब यही करेंगे, गांव जाएंगे और इसके साथ वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा, गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाएंगे। जैसे ही ये बात कही गई, सभी लड़कियां मुस्कुराने लगी। वहीं सजना हालांकि बुरी तरह पिट चुकी थी, लेकिन फिर भी लाल आंखों से आस्था को घूर रही थी। आस्था की आवाज सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गई थी, लेकिन बेहोशी की हालत में भी बड़बड़ा रही थी। आस्था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब ये सुनकर आस्था ने अपना सिर पकड़ लिया था। सजना को देखकर साफ दिखाई दे रहा था कि अब उसके बाद उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी, इसीलिए वो लगातार केवल अब आस्था मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी यही बात बोले जा रही थी। आस्था को सिर्फ सजना के लिए गहरा अफसोस था, लेकिन फिलहाल उसने राधिका को देखकर कहा था, बिल्कुल ठीक कह रही हैं राधिका दीदी, अब हमें इसके हाल पर ही इसे छोड़ देना चाहिए और जो आप कह रही हैं वही करना चाहिए। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, कहीं ना कहीं से भी लड़कियों के चेहरे पर एक अलग की तरह का संतोष दिखाई दिया था। फिलहाल वहीं अबीर पूरी तरह से खामोश खड़ा हुआ था। ना उसने अभी तक आस्था से एक भी शब्द कहा था और ना ही अरमान से। तभी अविनाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा था, वैसे मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल और दिमाग में काफी ज्यादा कश्मकश चल रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अंत भला तो सब भला, अभी फिलहाल हमें यहां से चलना चाहिए। वही नानी माँ घर जाने की बात कहते ही एक बार फिर से खामोश हो गई थी। आस्था को उनकी ये खामोशी पूरी तरह से खलने लगी। वो समझ चुकी थी कि नानी माँ के दिल में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, या फिर वो कोई ना कोई बात उससे छिपा रही हैं। इसीलिए उसने सीधे पूछा, आप मायूस क्यों लग रही हैं? अगर कोई बात है तो प्लीज हमें बताइए ना नानी माँ। लेकिन बदले में नानी माँ ने आस्था की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो नानी माँ का मूड ठीक करने के लिए आस्था हल्के मजाकिया अंदाज में बोली थी, हम जानते हैं हमारी टॉप नानी माँ, हमारा ड्रामा आपको पहले ही समझ आ गया था कि हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। तभी तो आपने छाती पीटना बंद कर दिया था। जिस तरह से आप छाती पीट पीट कर रो रही थी, अभी तो लग रहा था कि अगर एक दो बार और आपने हमें पीटना शुरू कर दिया तो हमें उठकर बैठना ही पड़ जाएगा। जैसे ही आस्था ने ये मजाक किया, नानी माँ उसे घूरते हुए बोली थी, गौरी मुझसे बात मत कर, एक तो तूने आज हमारी जान ही निकाल दी और ऊपर से अब हमसे मजाक भी कर रही है, खबरदार अगर तूने हमसे बात की तो। नानी माँ ने रोटते हुए मुंह बना लिया। आस्था भी ये देखकर थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन तभी अरमान आस्था के चेहरे की उदासी देखकर तुरंत नानी माँ के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, इसमें आस्था की कोई गलती नहीं है नानी माँ, सारी गलती मेरी है। इस बार मेरी आस्था ने मुझसे कहा था कि राजवीर की समस्या को सिर्फ खत्म नहीं करना है बल्कि जड़ से मिटाना है, और जड़ से खत्म करने के लिए उसके अंदर का पागलपन, उसकी सोच को खत्म करना बहुत जरूरी था। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? इसके लिए जो वो चाहता था मैंने वही किया। वो सिर्फ ये चाहता था कि मैं अपनी बीवी को मारकर उसकी लाश के साथ अपनी जिंदगी भी खत्म कर लूं, लेकिन उसका वो सपना पूरा नहीं हुआ। अरमान सबकी ओर देखते हुए बोला, मुझे पता है कि आप सबको बहुत तकलीफ हुई है और आज आप सबका दिल भी बहुत दुखा है हमारे इस ड्रामे से, लेकिन राजवीर जिंदल का सच जानने के लिए हमें ये सारा ड्रामा करना बहुत जरूरी था। अगर हम आज ही राजवीर जिंदल को मार देते तो भी उसे कोई पश्चाताप नहीं होता, वो खुशी खुशी मर जाता। मौत उसके लिए कोई सजा नहीं है, बल्कि मौत को भी वो एक जश्न की तरह लेता। आखिरकार अपने मनमर्जी की जिंदगी लेकर जो मर रहा था, लेकिन अब मैं ये अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि हमने उसे मारना नहीं है बल्कि हमें उससे जीने की वजह ही छीननी है। किसी लड़की का सुकून, उसकी जिंदगी, उस पर कलंक लगाकर वो खुद सुकून की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब हमने उससे उसकी वही सुकून भरी जिंदगी छीन ली है। फिलहाल अब आप हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अरमान को इतना झुककर इतनी शांति और समझदारी से बात करते देख अविनाश पूरी तरह हैरान रह गया था। कुछ ऐसा ही हाल एंजल का भी था। दोनों के मन में अरमान को लेकर जो भी गलत फहमियां थीं वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थीं, क्योंकि ये वाला अरमान सच में बदल चुका था। ये झुकना भी जानता था और अपनी बीवी के लिए किसी की जान लेना भी। इस अरमान में हर तरह के गुण और काबिलियत मौजूद थे। फिलहाल आस्था ने गहरी सांस ली और तुरंत सबके सामने जाकर अरमान को गले से लगा लिया। वो बोली, अरमान जी, आप हमारी दुनिया हैं और आपके बिना जीने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर अरमान का चेहरा खुशी से चमक उठा। ठीक उसी वक्त रौनक जल्दी से बोली, आस्था, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें घर के लिए निकलना चाहिए। तुम जानती हो, इस वक्त सब बच्चों की जिम्मेदारी इस वक्त तुम्हारी मामी कर है। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, वो इस वक्त इतने बच्चों को वो कैसे संभाल रही होंगी। भले ही वहाँ मदद के लिए नौकर और नर्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें तुरंत घर के लिए निकलना चाहिए। जैसे ही रौनक ने ये बात कही, सबको अचानक अपने अपने बच्चों की याद आ गई। इतने सारे ड्रामे के बीच सब अपने घर के बच्चों को भूल ही गए थे और फिर बिना देर किए सभी लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों में जाकर बैठ गए। वहीं क्योंकि अभिमान जी ने वसुंधरा को रोका नहीं था, तो उसके पास रायचंद विला जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वसुंधरा रायचंद विला चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वहीं वीर को अंदर से काफी सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि पहली बार अरमान ने उससे कुछ मांगा था और उसने वो काम पूरी ईमानदारी से पूरा किया था। उसके अंदर एक अलग ही तरह का जज्बा और संतोष था। वो खुश था कि वो अरमान सिंघानिया के किसी काम तो आ पाया। जाने से पहले दादाजी ने वीर से अच्छे से मुलाकात की थी, वसुंधरा का भी शुक्रिया अदा किया था। अभिमान जी ने भी वीर को गले लगाकर विदा किया और फिर एक बार फिर से वसुंधरा से मुंह मोड़ लिया। बाकी सभी लोग सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। आज सभी ने उस मेंशन में इस तरह कदम रखा था मानो कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हों। अरमान के आदेश पर जल्द ही सम्राट और राजवीर को मेंशन के तहखाने में कैद कर दिया गया। वहां उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया था, क्योंकि उनकी सजा अभी सिर्फ शुरू हुई थी। इतनी आसानी से भला उन्हें मौत कैसे आ सकती थी? जितना उन्होंने परेशान किया था और उसके परिवार के साथ जो कुछ किया था, उसके लिए उनकी सजा बहुत बड़ी होनी ही थी। इसीलिए अरमान कितनी जल्दी उनकी जान जाते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन क्योंकि राजवीर की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों की पूरी टीम, जो हमेशा से फार्म हाउस में अरमान की देखभाल किया करती थी, उन्हें पहले ही बुला लिया गया था। उन्होंने आते ही सम्राट और राजवीर का पूरी तरह से इलाज शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, उनके दिमाग के साथ होने वाले खेल को समझने और उसे कंट्रोल करने के लिए अरमान ने प्रोफेसर प्रशांत जी को भी वहां नियुक्त किया था, ताकि जिस तरह आज तक राजवीर ने नॉर्मल सीधे साधे लोगों पर वशीकरण करके कभी ड्रग्स देकर अपने दिमागी खेल का गलत इस्तेमाल किया था, अब वैसा उसके साथ किया जा सके। अब ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरों को कंट्रोल करेगा, बल्कि अब अरमान ने प्रोफेसर प्रशांत जी को पूरी छूट दे दी थी कि वो राजवीर पर हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद राजवीर के साथ क्या करना है, ये वो खुद अच्छे से जानते थे।
अभी फिलहाल अरमान ने अपनी सीक्रेट कैमरों से बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थीं। अब उन्हें बस सही समय पर सबके सामने दिखाना था, ताकि नैना माथुर का नाम पूरी तरह से साफ हो सके, क्योंकि नैना ने कभी कोई गलती नहीं की थी। उससे जो कुछ भी हुआ वो सब उससे करवाया गया था और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई थी। उधर जैसे ही आस्था वहां पहुंची, वो सीधे रश्मि के कमरे में गई। आखिरकार रश्मि उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आस्था ने देखा कि रश्मि बार बार मामी जी से यही पूछ रही थी, आखिर सब लोग कब आएंगे, काफी देर हो चुकी है। मनोज जी, प्रियंका, सबको मैंने देखने के लिए भेजा था, फिर अभी तक कोई आया क्यों नहीं? वो पूरी तरह से परेशान और बेचैन हो चुकी थी। तभी आस्था मुस्कुराते हुए बोली, रश्मि दीदी, हम सब आ गए हैं। जैसे ही आस्था ने ये कहा, रश्मि के चेहरे पर खुशी लौट आई। एक एक करके सभी लोग सबसे पहले मिनी हॉस्पिटल में जाकर रश्मि का हालचाल लेने लगे। रश्मि सबसे मिलकर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सबके चेहरों पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो तुरंत घबरा कर बोली, ये सब क्या है? तुम लोगों के चेहरे को क्या हुआ है? ये चोट के निशान कैसे? क्योंकि सभी के चेहरे पर मारपीट के साफ निशान थे। आकाश, सुमित, सभी लड़के और साथ ही सभी लड़कियां भी जो उनके साथ थीं, सबके चेहरे पर चोट के निशान मौजूद थे। रश्मि को इस तरह घबराते देख आस्था ने तुरंत उसे संभालते हुए कहा, रश्मि दीदी, हम सब बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और इस हालत में आपका इतना स्ट्रेस लेना बिल्कुल सही नहीं है। आस्था की ये बात सुनकर रश्मि की आंखें भर आईं। वो भावुक होकर बोली, इतना सब कुछ हो गया और हम कुछ कर भी नहीं पाए, इस वक्त हमें कितना बुरा लग रहा है ये हम बता भी नहीं सकते। तभी आकाश रश्मि के पास आया और मुस्कुराकर बोला, किसने कहा कि तुम हमारे साथ नहीं थी? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा, सब कुछ तो मेरे साथ था, और तुम्हारा यही प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहते हुए आकाश ने सबके सामने ही रश्मि के माथे को चूम लिया। रश्मि शर्म से झुक गई। ये देखकर बाकी सब लोग इधर उधर देखने लगे। तभी आह्वान धीरे से ध्रुव से बोला, यार मुझे तो लगता था कि इस घर में सबसे ज्यादा रोमांटिक मैं हूँ, लेकिन ये देखो आकाश भाई का भी रोमांच का सीजन चल रहा है। मुझे लगता है हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, कबाब ने हड्डी नहीं बनना चाहिए। ये कहकर वो तुरंत रौनक के साथ बाहर निकल गया। वहीं ध्रुव वंशिका को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। आखिरकार सभी को एक नई जिंदगी मिली थी। इधर जैसे ही सुमित बाहर निकला, राधिका ने उसे कोहनी मारते हुए घूर कर कहा, देखा तुमने आकाश कितना रोमांटिक है, और एक तुम हो जो हमेशा ऐसे ही मुंह बनाकर घूमते रहते हो। तुम्हारा रोमांटिक साइड तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, सुमित हंसते हुए बोला। अच्छा अभी दिखाता हूँ। ये कहकर उसने राधिका का हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसके कानों के पास झुककर बोला, मैं कितना रोमांटिक हूँ ये मैं तुम्हें कमरे में बताऊंगा। फिलहाल सभी लोग हल्की हल्की मुस्कान के साथ वहां से आगे बढ़ गए। आस्था भी मुस्कुराते हुए हॉल में जाकर बैठ गई। धीरे धीरे सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। आज सबके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। एक बड़ी जंग जीतने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में अभी भी कई सवाल बाकी थे जिनके जवाब सभी लोग जानना चाहते थे। आखिर क्यों आस्था और अरमान ने राजवीर सम्राट को अपने मेंशन में रखा है? क्यों करवा रहा है अरमान उनका इलाज? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर तेरे इश्क में।